अब यहाँ पर जो है आपके ग्रंथ में वो परामर्श को फाइनली बता रहे हैं। पहले तो शुरू में कह दिया था कि तृतीय ज्ञान जो होता है उसी का नाम है परामर्श, और फिर उसके बाद इनको तृतीय ज्ञान बताना था कि तृतीय ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, द्वितीय का, प्रथम का कैसा होता है। तो वो उस समय में पहले नहीं बताया, पहले वो व्याप्ति पर चले गए कि व्याप्ति संबंध का अवधारण कैसे होता है उसको बताने लगे। और आज के पाठ में जो है इसका उपसंहार करेंगे और परामर्श ज्ञान कैसा होता है उसका। चलिए देखते हैं। तत अनेन न्यायेन, यहाँ पर न्यायेन का अर्थ कर लीजिए रीतिया, इस रीति से। रीति क्या बताई गई थी कि महानस में जो है ना भूयो भूयो धूम और अग्नि का दर्शन होता है, और उस दर्शन होने से धूम और अग्नि का जो स्वाभाविक संबंध है व्याप्ति नाम का संबंध, उसका निश्चय होता है। तो अनेन न्यायेन, इस न्याय से मन इस रीति से धूम अग्नियोः व्याप्तो गृह्यमान आयाम, धूम और अग्नि में व्याप्ति जो है गृह्यमान होती है, माने व्याप्ति का ज्ञान होता है। महानसे यद धूम ज्ञानम तत् प्रथमम, महानस में जो धूम का ज्ञान होता है, महानस माने याद है ना रसोई घर, उसमें जो धूम ज्ञान होता है वह प्रथम धूम ज्ञान है। याद रखिए कि केवल धूम ज्ञान कहने का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ धूम ज्ञान का मतलब बहनी व्याप्य धूमवान, धूम का ज्ञान। क्योंकि महानस में भूयो दर्शन होगा वहीं पर उसको व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बहनी, इस तरह से दोनों में साहचर्य नियम होता है, दोनों में व्याप्ति होती है, उसमें धूम जो है व्याप्य है और बहनी जो है व्यापक है, ये ज्ञान हो जाना जो है यही है व्याप्ति का ज्ञान होना, माने इन दोनों के बीच में व्याप्ति नाम का संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो है व्याप्य है और ये जो है व्यापक है, तो व्यापक अधिक जगह रहता है मैं बता चुका हूँ, और व्याप्य जो है कम जगह रहता है। तो व्याप्य जहाँ रहेगा वहाँ व्यापक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका उल्टा आप नहीं कह सकते कि व्यापक जहाँ रहेगा वहाँ व्याप्य रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैंने कहा था कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहनी, ये ठीक है, माने यत्र यत्र धूमा माने जहाँ जहाँ व्याप्य धूम है, तत्र तत्र बहनी माने वहाँ वहाँ व्यापक बहनी रहता है। इसका उल्टा नहीं कर सकते कि यत्र यत्र बहनी तत्र तत्र धूमा माने जहाँ जहाँ व्यापक बहनी है वहाँ वहाँ जो है व्याप्य धूम है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है आपको तप्ताय पिंड में जो है वह उसका अभाव हो जाएगा। तो महानस में या और भी जगह पर जब भूयो दर्शन होता है धूम के साथ बहनी का, तो फिर वहाँ पर व्याप्ति ज्ञान होता है, और व्याप्ति ज्ञान होने के बाद महानस में जो है ना बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान होगा, वह जो है महानसीय जो बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान है वही प्रथम ज्ञान है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। फिर आगे कहते हैं पर्वतादो पक्षे यद धूमक ज्ञानम तद द्वितीयम, पर्वत आदि में जो धूम का ज्ञान होता है वह द्वितीय धूम ज्ञान है। धूम ज्ञान मतलब फिर वही बात, बहनी व्याप्य धूम ज्ञान जो होता है पर्वत आदि पर, उस स्थल पर, उस जगह पर, तो वह जो है माने व्याप्ति ज्ञान जहाँ हुआ उससे अलग जगह पर अगर आपको बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान होता है तो वह हो गया द्वितीय ज्ञान। अब यहाँ पर एक शब्द इन्होंने दिया है पर्वतादो पक्षे, पक्ष शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। इस पक्ष को हमें समझना है थोड़ा, अनुमान की जो प्रक्रिया होती है वो आगे तो बड़ी विस्तार से बताई जाएगी। संक्षेप से ये है कि हम व्याप्य को अगर कहीं देखते हैं ना, उससे व्यापक का अनुमान करते हैं, तो व्याप्य धूम है, तो व्याप्य धूम अगर हमें पर्वत पर दिखाई दे दिया तो हम मान कर लेते हैं कि पर्वत पर बहनी भी है, क्योंकि बहनी उसका व्यापक होता है। तो जहाँ पर अनुमिति की जाती है उसका नाम है पक्ष, पर्वतोयम बहनीमान, ये अनुमिति होती है, माने अयम पर्वत बहनीमान, यह जो पर्वत है यह बहनीमान है, अर्थात बहनी से युक्त है। तो यहाँ पर किसकी अनुमति हुई? बहनी की अनुमति हुई। कहाँ पर हुई? पर्वत पर हुई। तो मैंने यही बताया कि जहाँ पर अनुमति होती है वो जहाँ जो है वही पक्ष कहलाता है। तो पर्वत पर अगर बहनी की अनुमति होती है तो पर्वत जो है वह पक्ष कहलाएगा। तो जिस पर या जिस में जो भी कह सकते हैं, तो पर्वत में बहनी का ज्ञान जो है वह अनुमति ज्ञान है, तो पर्वत जो है वह पक्ष हो गया। तो पर्वतादो पक्षे यद धूमक ज्ञानम तद द्वितीयम, पर्वत आदि पक्ष में जो धूम का ज्ञान होता है, माने बहनी व्याप्त धूम का ज्ञान होता है, वह द्वितीय धूम ज्ञान कहलाया। ततः उसके बाद, पहले प्रथम ज्ञान हुआ कहाँ पर? महानस में। नहीं, सबसे पहले तो व्याप्ति का अवधारण हुआ भूयो दर्शन से। उस व्याप्ति के बाद जो है महानसीय बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान हुआ, फिर पर्वतीय बहनी व्याप्य धूम का ज्ञान हुआ द्वितीय ज्ञान। ततः उसके बाद पूर्व गृहीताम धूमाग्नियोह व्याप्तिम स्मृत्वा, पूर्व गृहीताम, गृहधात का अर्थ ज्ञान होता है, तो पूर्व गृहीताम माने पूर्व ज्ञाताम, पूर्व में जो ज्ञात है क्या? धूम अग्नियोह व्याप्ति, धूम और अग्नि की व्याप्ति का जो पहले ज्ञान हुआ रहता है, ताम स्मृत्वा, उसका स्मरण करके, यत्र धूमः तत्र अग्निः इति तत्रैव पर्वते पुनः धूमं परामृशति, उस व्याप्ति का स्मरण करता है, क्योंकि महानस में उसको व्याप्ति का ज्ञान हो गया है। जब वह पर्वत पर धूम देखता है तो उसी का वह परामर्श करता है। परामर्श करता है मतलब व्याप्ति ज्ञान को स्मरण करके है वहाँ पर्वत पर भी जो है यत्र धूमः तत्र अग्निः, इस तरह से वह उसको ज्ञान होता है। यही है परामर्श करना, माने एक बार जो ज्ञान हो गया रहता है उसी ज्ञान को अगर दोबारा करते हैं तो उस ज्ञान का नाम होता है परामर्श। तो जो व्याप्ति का ज्ञान उसको महानस में हो चुका है उसका स्मरण करके फिर पर्वत पर जो है ना वह उस ज्ञान का परामर्श करता है, माने फिर से वह उस ज्ञान को हासिल करता है। कौन सा ज्ञान? यत्र धूमः तत्र अग्नि, यही ज्ञान महानस में भी हुआ था उसको, और यही ज्ञान यहाँ पर पर्वत पर भी हो रहा है। चूंकि दोबारा हो रहा है इसलिए इसका नाम दे दिया परामृशति, माने परामर्श करता है, माने दोबारा उसको वह ज्ञान होता है। किसका? यत्र धूमः तत्र अग्नि का। अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः इति, अब जब वहां पर उसको परामर्श होता है माने धूम का ज्ञान होता है पर्वत पर, तो फिर उसका ज्ञान अब कैसा स्वरूप लेता है? तो अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, अस्ति अत्र माने यहाँ पर है, कहाँ पर? पर्वत में अग्नि के साथ व्याप्त धूम यहाँ पर्वत पर है, इस तरह का जो है ना उसको धूम ज्ञान होता है। इसी को हमने लिखाया था आपको कि बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, ये जो बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत है इसी का ये अर्थ है। अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, माने इस पर्वत पर अग्नि से व्याप्त धूम विद्यमान है। इस तरह का जो धूम ज्ञान है अर्थात बहनी व्याप्य धूमवान पर्वत, यह जो धूम ज्ञान है यही जो है ना तृतीय धूम ज्ञान कहलाता है। यहाँ एक चीज और बता दूं, मैंने बताया था ना जहाँ व्याप्ति होती है वहां पर एक व्याप्य होगा दूसरा व्यापक होगा, तो व्याप्य और व्याप्त ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। बहनी व्याप्य धूम भी कह सकते हैं और बहनी व्याप्त धूम भी कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर व्याप्त कहा है, इसका मतलब व्याप्य समझना है। तो अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्यो धूमः, इस तरह का जो धूम ज्ञान है वही धूम ज्ञान तृतीय है, और यही जो तृतीय धूम ज्ञान है पर्वतोयम बहनीमान, यही धूम ज्ञान जो है वह परामर्श कहलाता है। एतच्च अवश्य अभ्युपेतव्यम, यह जो तृतीय धूम ज्ञान है ये अवश्य अभ्युपेतव्य है, अभ्युपेतव्य है माने स्वीकर्तव्य है, अवश्य इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ताकि क्यों अवश्य क्यों करना चाहिए? ताकि अन्यथा अगर तृतीय ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे अनुमिति में तो क्या होगा कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इत्येव स्यात्, माने इसी तरह का केवल व्याप्ति ज्ञान होगा कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इह तु कथम अग्निना भवितव्यम तस्माद, ये ज्ञान नहीं होगा कि यहाँ पर जो है अग्नि है इस तरह का ज्ञान नहीं होगा। माने इस जगह पर अग्नि है, ये ज्ञान जो है नहीं हो पाएगा। ये ज्ञान तभी होगा जब हम तृतीय ज्ञान को मानेंगे। अगर दो ही ज्ञान माने, महानसीय ज्ञान, महानसीय धूमक ज्ञान और पर्वतीय धूमक ज्ञान, दो ही ज्ञान अगर मानेंगे तो फिर आपको केवल व्याप्ति का ज्ञान तो रहेगा, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, परंतु ये ज्ञान नहीं रहेगा कि अस्मिन् पर्वते अग्नि। इस तरह का ज्ञान होने के लिए आपको तृतीय ज्ञान जो है मानना ही पड़ेगा, वही कहते हैं। अन्यथा माने तृतीय ज्ञान अगर नहीं मानेंगे तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ये सामान्य ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान नहीं होगा कि इस जगह पर ये अग्नि जो है रहता है। यह तो कथम अग्निना भवितव्यम, यह माने इस जगह पर अग्निना भवितव्य माने अग्नि को होना चाहिए, इति कथम स्यात्, माने इस तरह का ज्ञान जो है कैसे होगा अगर तृतीय ज्ञान नहीं मानेंगे। तस्मात् इहापि धूमः अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम्, इसलिए ये मानना चाहिए कि यह अपि धूमः अस्ति, जैसे महानस में धूम है उसी तरह से इस पर्वत पर भी जो है धूम है। इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम, अन्वेषितव्य माने स्वीकर्तव्यम, इस ज्ञान को भी स्वीकार करना ही चाहिए। अयम एव लिंग परामर्श, यही जो है लिंग का परामर्श है। लिंग हो गया धूम, परामर्श मतलब हो गया ज्ञान, लिंग परामर्श मतलब धूमक ज्ञान। कौन सा धूमक ज्ञान? तो तृतीय धूमक ज्ञान जो है वही लिंग परामर्श है। इसी के कारण जो है ना ये अनुमिति होती है कि यहाँ पर बहनी है। अगर ये ज्ञान नहीं हो तृतीय ज्ञान तो केवल इतना ज्ञान होगा कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ये ज्ञान नहीं होगा कि अत्र पर्वते अग्नि। इस तरह का ज्ञान होने के लिए, इस तरह की अनुमिति होने के लिए लिंग परामर्श मानना जरूरी है। वही कहा अयमेव लिंग परामर्श अनुमितिम प्रति कर्णत्वाच्च अनुमानम, और अनुमिति के प्रति जो है इस लिंग परामर्श, यह लिंग परामर्श जो है ये करण का काम करता है, ये करण है, तो करण होने के कारण इसी का नाम है अनुमानम, इसी को हम अनुमान कहते हैं। तस्मात् अस्थि अत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, इसी करण से माने इसी लिंग परामर्श से जो है अनुमिति ज्ञान उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। किस तरह का अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है? कि अस्थि अत्र पर्वते अग्नि, माने इस पर्वत पर अग्नि है। इसको अगर न्याय की भाषा में कहें तो पर्वतोयम बह्निमान, ये पर्वतोयम बह्निमान ये अनुमिति का स्वरूप है। तो पर्वतोयम बह्निमान ये जो अनुमिति ज्ञान होगा, इस अनुमिति ज्ञान में लिंग परामर्श जो तृतीय धूम ज्ञान है, कौन सा वह है? तो बहनी व्याप्य धूमवान पर्वतः, यह जो तृतीय धूम ज्ञान है जिसको जिसको का अर्थ बताया अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, ये वाला ज्ञान भी कह सकते हैं। तो यह जो ज्ञान है वही लिंग परामर्श है, और इसके तुरंत बाद अनुमिति होती है। मैंने बताया हुआ है कि जिस कारण के तुरंत बाद में कार्य हो उसको करण माना जाता है। असाधारणम कारणम करणम, जो असाधारण कारण होता है वही करण कहलाता है। तो असाधारणत्व तो क्या है? वही तुरंत बाद में कार्य का उत्पन्न होना ही असाधारणत्व है, माने उसी का नाम असाधारण है। साधारण माने सामान्य, असाधारण माने विशेष, तो उसमें विशेषता यही होती है करण में कि उसके तुरंत बाद में जो है अनुमिति होती, यहाँ पर कार्य क्या है? अनुमिति है, तो अनुमिति रूपी कार्य वहाँ पर संपन्न होता है। तो इस तरह से तृतीय जो धूम ज्ञान है उसको लिंग परामर्श मान करके आपको समझाया गया। अब यहाँ पर फिर प्रश्न किया जाता है कि ये तीन जो धूम ज्ञान इन्होंने माने और तीसरा धूम ज्ञान को इन्होंने लिंग परामर्श का ज्ञान माना और कहा कि इसी से अनुमिति होती है, उस पर कोई प्रश्न कर रहा है कि पहला जो धूम ज्ञान है वो कहाँ पर हो रहा है? महानस में हो रहा है। तो महानस में जब धूम का ज्ञान हो गया, माने बहनी व्यापी धूम का ज्ञान हुआ, वही ज्ञान क्यों नहीं अग्नि का अनुमान करा देता है? वही कहा ननु कथम प्रथमम महान से यद धूमक ज्ञानम तत् नौ अग्निम अनुमापयति, कि महानस में जो प्रथम धूम का ज्ञान होता है वही कथम न अग्निम अनुमापयति, वही क्यों नहीं अग्नि का अनुमान करा देता है? तो कहा कि सत्यम, कहा कि प्रश्न तो आपका जानदार है, सही कह रहे हैं, ऐसा है, क्यों नहीं होता उसका मैं जवाब देता हूँ। व्याप्तेह अग्रही तत्वात्, कहा कि प्रथम जो महानसीय धूम ज्ञान है उस समय में व्याप्ति अगृहित होती है, माने उस समय में व्याप्ति का ज्ञान नहीं रहता है और अनुमिति होने के लिए व्याप्ति ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रथम महानसीय ज्ञान, महानसीय जो धूमक ज्ञान है उस समय में व्याप्ति अगृहित है, व्याप्ति का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए अनुमिति का भी उदय नहीं होता, माने अनुमिति भी नहीं होती। तो जो प्रश्न किया कि प्रथम महानसीय धूमक ज्ञान से अग्नि का अनुमान क्यों नहीं होता है, उसका जवाब ये हुआ कि अनुमिति के लिए व्याप्ति का ज्ञान होना जरूरी है और प्रथम महानसीय ज्ञान के समय में, उस समय में तो भूयो दर्शन ही होता है ना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बहनी ही, ये ज्ञान उस समय में नहीं होता। उस समय में बार बार देखता है कि अच्छा आग है, धुआं है, आग है, धुआं है, आग है, उस समय में यही देखता रहता है। तो यह जो प्रथम महानसीय धूमक ज्ञान है उस समय में व्याप्ति का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए अनुमिति नहीं होती है। अब दूसरा कहा कि ठीक है, जब व्याप्ति का ज्ञान हो गया भूयो दर्शन से, उसके तुरंत बाद जो है अग्नि का अनुमान हो जाना चाहिए, वो प्रश्न करें। अथ व्याप्ति निश्चय उत्तर कालम महानसे एव अग्नि अनुमीयताम, कहा कि महानस में तो में ही तो भूयो दर्शन होगा और भूयो दर्शन होगा उसके बाद व्याप्ति का निश्चय वहीं हो जाएगा महानस में ही, तो ठीक है ना, व्याप्ति का निश्चय होने के बाद हो जाए अग्नि का अनुमान, व्याप्ति निश्चय से पहले चलिए नहीं होगा लेकिन उसके बाद हो जाए महानस में ही, महानस एव अग्नि अनुमीयता, महानस में ही अग्नि का अनुमान हो। ताकि मैवम, ताकि नहीं, महानस में अग्नि का अनुमान नहीं होगा, क्यों कि अग्ने दृष्टत्व न संदेहस्य अनुदयात, ताकि महानस में तो अग्नि दृष्ट है माने प्रत्यक्ष है, तो जहाँ प्रत्यक्ष हो वहाँ अनुमिति कैसे होगी, अनुमिति तो होती है अप्रत्यक्ष स्थल में। वही कहा मैवम, माने महानस में अग्नि की अनुमिति नहीं होगी, क्यों, तो अग्नि दृष्टत्व न, अग्नि जो है वहाँ पर दृष्ट है, संदेहस्य अनुदयात, वहाँ पर संदेह ही, संदेह का अनुदय होगा माने संदेह है ही नहीं वहाँ पर, जहाँ संदेह हो कि यहाँ बहनी है अथवा बहनी नहीं है, इस तरह का जहाँ संदेह हो, तो यह संदेह कहाँ होगा, जहाँ प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, तो यह कहाँ होगा, पर्वत पर होगा, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे में रहता है, वहाँ पर धुआं उठता रहता है, नीचे से जो है ना बहनी दिखाई नहीं देती है, केवल धुआं दिखाई देता है, वहाँ संदेह होता है कि बहनी है कि नहीं है, तो वहाँ पर अनुमिति होगी। लेकिन महानस में तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अग्नि है, वहाँ संदेह ही नहीं है, तो जब संदेह नहीं है तो अनुमिति नहीं होगी। तो जैसे अनुमिति के लिए व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह से अग्नि के लिए, अनुमिति के लिए संदेह का भी ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ महानस में चूंकि संदेह नहीं होता अग्नि के प्रत्यक्ष होने के कारण, इसलिए महानस में व्याप्ति ज्ञान होने के बावजूद भी अग्नि की अनुमिति नहीं हो पाती है। बस आज यहीं तक रखते हैं।